इसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, इसीलिए तो गुस्सा भी नहीं किया, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। एक बार गुस्से में तो होता तो कम से कम समझ आता कि मजबूरी में शादी की है। वो कॉफ़ी लेकर कमरे में लौटी, कप ज्ञान को देते हुए बोली, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ कहो, उसने कॉफ़ी का कप पकड़ते हुए कहा। क्या सोचा है आपने? हमारी ज़बरदस्ती शादी कर ली गई, न्यारा ने हिम्मत करके कहा। ज्ञान ने एक घूंट लिया, फिर उसकी तरफ देखा। ये बात तो मुझे शादी होने से पहले पूछती तो समझ आता, अब शादी हो चुकी है, अब इस बात का कोई मतलब है? न्यारा चुप हो गई। बात तो सही थी, अब क्या मतलब था, शादी तो हो चुकी थी। अब हम क्या करेंगे? उसने फिर पूछा। अच्छा है ना, अब तुम्हें फ्लैट बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज्ञान ने सहजता से कहा, वहीं रह सकती हो। वो जैसे हर बात को बेहद प्रैक्टिकल तरीके से देख रहा था। बात आपकी ठीक है, न्यारा ने धीरे से कहा। सो जाओ तुम, ज्ञान बोला, मुझे अभी काम करना है। न्यारा कमरे में इधर उधर देखने लगी। उसने अलमारी से कपड़े निकाले और चेंज करने चली गई। ज्ञान के पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे, वो पहले ही नरेश बेदी के कपड़े पहन चुका था, एक टी शर्ट और लोअर जो साइज में थोड़े छोटे थे। फिर भी वो आराम से बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में म्यारा बदलकर बाहर आई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो सोए तो कहाँ, कमरे में कोई बड़ा सोफा नहीं था, जो बेड था वो डबल से थोड़ा कम, सिंगल से थोड़ा ज्यादा था। तीनों भाई बहनों के कमरों में ऐसे ही बेड लगे हुए थे। ज्ञान ने देखा कि वो बार बार अलमारी खोल रही है, कभी इधर देखती है कभी उधर। क्या प्रॉब्लम है? उसने बिना स्क्रीन से नज़र हटाए पूछा। मैं नीचे कुछ डालने के लिए कुछ देख रही थी, न्यारा बोली। नीचे सोने के लिए क्यों? ज्ञान ने उसकी तरफ देखा। अब तुम जहां सो सकती हो बेड पर सो जाओ। नीचे सो जाऊं तो? नीचे सोओगी तो बीमार हो जाओगी, और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो अभी काम कर रहा हूं, तुम आराम से सो जाओ, उसने बेड की तरफ इशारा किया। क्या आपके साथ? न्यारा हकलाते हुए बोली, वो सचमुच कन्फ्यूज और घबराई हुई थी। ज्ञान ने गहरी सांस ली। प्लीज़ न्यारा, मुझे बहुत काम है, मेरा पूरा दिन पहले ही खराब हो चुका है, अब तुम घूम घूम कर मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं सोने वाला नहीं हूँ, तुम आराम से सो जाओ, समझी? उसकी आवाज़ थोड़ी सख्त थी, वो सच में डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, न्यारा ने धीरे से कहा। वो बेड के एकदम किनारे पर जाकर लेट गई, इतना किनारे कि जैसे गिर ही पड़ेगी। उसने लेटे लेटे ज्ञान को देखा, वो झुककर लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। कमरा आधा रोशन आधा अंधेरे में था। कुछ पल बाद ज्ञान ने उसकी तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। अब कमरे में अंधेरा था, लैपटॉप की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसे स्क्रीन साफ दिखाई दे रही थी, उसे अंधेरे की आदत थी। न्यारा ने आंखें बंद करने की कोशिश की, दिल अब भी तेज धड़क रहा था। यह आदमी आखिर है क्या, इतना शांत, इतना अलग। बेड छोटा था, उनके बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी, मगर वो दूरी जैसे मीलों जितनी लंबी थी। और उस रात एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर दो लोग लेटे थे, जिनकी शादी तो हो चुकी थी मगर रिश्ता अभी भी अनकहा, अधूरा और अनछुआ था। पार्टी खत्म हो चुकी थी, रोशनी की लड़ियां अब भी हल्की हल्की चमक रही थी, मगर मेहमान जा चुके थे और लॉन में सन्नाटा उतर आया था। नूर ने कपड़े बदल लिए थे, उसने सिंपल सा सलवार सूट पहन लिया था, गले में दुपट्टा सलीके से डाला हुआ था और बाल पीछे बांध रखे थे। वो लॉन में धीरे धीरे टहल रही थी और बार बार अपनी अम्मी अब्बा को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार एक ही जवाब, फ़ोन बंद। या अल्लाह, वो बुदबुदाई और फिर दोबारा कॉल मिलाया। उधर से फिर वही स्विच ऑफ, वो बार बार ट्राई कर रही थी मगर उसका खुद का फ़ोन भी ज़्यादा चार्ज नहीं था। आखिरकार स्क्रीन झपकी और उसका फ़ोन भी बंद हो गया। बस अभी की अभी बंद होना था, नूर झुंझला कर बोली। उसी वक्त फैज़ान लॉन के कोने में खड़ा सामान इकट्ठा करवा रहा था, वो शाम की पार्टी के इंतज़ाम के लिए आया था। कुर्सियाँ, डेकोरेशन का सामान, टेबल सब कैंटर में रखवाया जा चुका था। कैंटर बाहर निकल गया, फैज़ान ने गेट बंद किया और जैसे ही पलटा उसकी नज़र नूर पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखता रहा, सफ़ेद लाइट में खड़ी परेशान सी, फ़ोन हाथ में लिए। आपका फ़ोन बंद हो गया? उसने धीरे से पूछा। नूर ने हल्का सा सिर हिलाया। फैज़ान ने तुरंत अपना फ़ोन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। आप मेरे फ़ोन से बात कर सकती हैं? नूर अब तक उसे घर का एक नौकर ही समझती थी, कोई ऐसा लड़का जो अरमान के घर में काम करता हो। नहीं, सुबह कर लूँगी, सो गए होंगे अब तक, नूर ने संकोच से कहा। फैज़ान समझ गया, वो उसके फ़ोन से बात नहीं करना चाहती, शायद एहतियात, शायद झिझक। आप चाहें तो ताई अम्मी के पास जाकर फ़ोन कर लें, फैज़ान ने सुझाव दिया। नूर ने सोचा, इतनी रात को परेशान करना ठीक तो नहीं, मगर दिल मान नहीं रहा था। वो कुछ पल चुप रही, फिर अचानक पूछ बैठी। आपका सारे घर वालों से अच्छा रिश्ता है? फैज़ान ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। क्यों? पार्टी में भी देखा, आप हर जगह मौजूद थे, सबसे बात कर रहे थे, रेहान से भी बात की आपने, आपने उसे बताया कि मैं चली गई हूँ, आप हर किसी से बड़े अच्छे से बात करते हैं। फैज़ान ने नज़रें झुका ली। आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं? नूर ने फिर पूछा। हाँ, बचपन में आया था, फैज़ान ने शांत स्वर में कहा। बचपन में? नूर चौंकी। हाँ, अपने मॉम डैड की मौत के बाद यहाँ आया था, उसने सहजता से कहा, जैसे कोई पुरानी बात दोहरा रहा हो। नूर के कदम ठिठक गए। उसने पहली बार फैजान को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी परिपक्वता थी, जैसे उम्र से पहले ही सब समझ लेना पड़ा हो। फैजान ने बीच का गेट खोला जो अरमान के घर की तरफ जाता था। गुड नाइट, उसने धीरे से कहा और अंदर चला गया। नूर वहीं कुछ पल खड़ी रही, अपने मॉम डैड की मौत के बाद। उसके दिल में हल्की सी टीस उठी। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी, मगर फिर कदम मुड़ गए। उसे अपनी अम्मी से बात करनी थी, किसी भी हालत में। वो रेहाना बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी, मगर इस वक्त रेहाना बेगम अपने कमरे में नहीं थी। नूर जो उनके कमरे की तरफ जा रही थी, अचानक ठिठक गई। हाल में बना वो कमरा, जिसकी कांच की दीवारें बाहर से साफ दिखाई देती थीं, अंदर से हल्की रोशनी में जगमगा रहा था। उसने देखा, रेहाना बेगम, रेहान और सादिया तीनों वहां बैठे हुए थे। नूर के कदम वहीं रुक गए। वो लौटना चाहती थी, मगर तभी उसके कानों में अपना नाम पड़ा। उसका दिल थक से रह गया। वो कांच की दीवार से थोड़ी दूर परछाई की तरह खड़ी हो गई। अंदर रेहाना बेगम की आवाज़ गूंज रही थी। रेहान, ये क्या था? ऐसे माइक फेंक कर चले गए तुम? तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? सबको यही लगेगा कि तुम्हारा और सादिया का रिश्ता ऐसा ही है। रेहान की आंखों में अब भी गुस्सा था। तो आपने मुझे यही बात करने के लिए बुलाया था? वो तीखे स्वर में बोला। तुम्हें अंदाजा है आज कितनी बदनामी हुई है? रेहाना बेगम ने कहा। रेहान अचानक खड़ा हो गया। आपको पता है, सादिया की वजह से नूर अपने रिश्तेदारों के घर चली गई थी। नूर का दिल जैसे किसी ने जोर से दबा दिया हो। मेरी वजह से? रेहाना बेगम ने गहरी सांस ली, जहां से इकबाल भाई उसे वापस लाए थे। उन्होंने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, तुम जानते हो, इकबाल चाचा के हिसाब से वहां नूर का रहना सुरक्षित नहीं था, और वैसे भी अगर वहां उसके साथ कोई ऊंच नीच हो जाती तो तुम्हारे डैड को और इकबाल चाचा को क्या जवाब देते? रेहान की आवाज़ भर्रा गई, मगर गुस्सा कम नहीं हुआ। वो मेरी जबान पर उसे जहां छोड़कर गया था, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, समझिए आप। सादिया अब तक चुप बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। तो आप क्या कहती उन्हें? रेहान ने फिर कहा, कि नूर रेहान की बीवी की वजह से घर छोड़कर चली गई, कि मेरी बीवी की वजह से?